मुख्य समाचारों में प्रधानमंत्री ने कहा भारत के साथ नया व्यापार समझौता सरकार के आर्थिक प्रबंधन का है सबूत। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात और अभिनेता विल स्मिथ ने दिया एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस से त्याग पत्र। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ जो एक नया व्यापार समझौता किया है वो उनकी सरकार की आर्थिक योजना की सफलता का और सबूत है। सरकार का कहना है कि इस समझौते पर आज हस्ताक्षर होने से ऑस्ट्रेलिया के निर्यात बाजारों में विविधता आएगी और चीन पर देश की निर्भरता कम होगी। इससे भारत में ऑस्ट्रेलियाई निर्यात पर 85% से अधिक टैरिफ में कटौती होगी। ये निर्यात शीप मीट, ऊन, एवोकाडो, प्याज, नट्स और फलों जैसे उत्पादों का है। हालांकि गौमांस, डेयरी और सफ़ेद चना इसमें शामिल नहीं है। श्री मॉरिसन का कहना है कि ये सौदा कई अन्य देशों के लिए ईर्ष्या का कारण होगा।
We are opening the biggest door of one of the biggest economies in the world in India. Now, the Indian economy is worth billions and billions and billions all around the world. And there are many countries who want to do more business with India. But it's actually Australia that has been able to secure and the agreement that we've been able to reach.
लगभग 9 वर्षों के बाद ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन सुविधा से मुक्त किए गए एक शरणार्थी ने शेष रोके हुए लोगों को भी मुक्त करने का आह्वान किया है। ईरानी हुसैनी लतीफ़ी उन 18 शरण चाहने वालों में से थे जिनके लिए उनके वकीलों ने बताया है कि उन्हें मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन में ऑनशोर डिटेंशन सुविधाओं से ब्रिजिंग वीजा पर रिहा किया गया है। लेकिन रिपोर्ट्स हैं कि कम 30 लोग जो ऑफशोर डिटेंशन से अब निरस्त किए गए मेटबैक कानूनों के तहत ऑस्ट्रेलिया आए थे अभी भी डिटेंशन में हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलियन सीमा बल ने इसकी पुष्टि नहीं की है। श्री लतीफ़ी की रिहाई उनके 33वें जन्मदिन के साथ हुई और उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें और दूसरों को क्यों नहीं छोड़ा गया।
I want to see my friends to get released as soon as possible from Mayport, from detention center, because I'm still, not only me and other friends who got released last night, we're still thinking about our friends. We've been on this situation for almost 9 years, so we become like big family. So I'm still thinking of them, and I hope they're going to release them as soon as possible, because that's make me more happy.
लेबर नेता एंथनी एल्बनीसी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें सूचित नहीं किया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति फेडरल संसद को संबोधित करेंगे। वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने गुरुवार शाम को वीडियो द्वारा संसद को संबोधित किया। इससे कुछ समय पहले श्री एल्बनीसी अपना बजट इन रिप्लाई भाषण देने वाले थे। ये कहा जा रहा है कि सरकार ने जानबूझकर उस समय श्री ज़ेलेंस्की के भाषण को लेबर के भाषण पर हावी हो जाने के लिए निर्धारित किया था। श्री एल्बनीसी कहते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था।
This government are not really good at expressing the normal courtesies that occur. The Prime Minister didn't bother to ring me, for example, about President Zelensky's address before the Parliament. And that's a matter for him. But of course, I would change the way that courtesy was offered in the Parliament, I've got to say.
यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि रूसी सेना उनके देश के उत्तर में शहरों के पीछे हट रही है, लेकिन उन्होंने अपने नागरिकों को चेतावनी दी कि वे यानी रूसी सेना एक भयावह स्थिति को पीछे छोड़ रही है। अपने रात्रि वीडियो संबोधन में व्लादिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सैनिक पूर्वी यूक्रेन में डॉनबॉस में और हार्किव के पास अपनी उपस्थिति बना रहे हैं। उधर मॉस्को ने यूक्रेन के हेलीकॉप्टर्स द्वारा रूस पर एक ईंधन डिपो पर गोलाबारी करने का आरोप लगाया है, हालांकि यूक्रेन ऐसी किसी भी जिम्मेदारी से इनकार करता है। इस बीच ऐसा प्रतीत होता है कि यूक्रेन ने राजधानी कीव के आसपास और अधिक क्षेत्र पर वापस कब्जा कर लिया है और श्री जेलेंस्की ने उन लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है जो पुनः उस वापस प्राप्त क्षेत्र में लौट रहे हैं।
Occupiers are retreating in the north of our country, slowly but noticeably. Somewhere they are pushed away with fighting, somewhere they are leaving their positions themselves. After their withdrawal, the situation is catastrophic and there's so much danger. And this is true. First of all, airstrikes might continue. Secondly, they're mining the entire territory, houses, hardware, even the bodies of those killed. There are so many tripwires and other dangers.
श्री जेलेंस्की ने ये पुष्टि भी की है कि तबाह हुए शहर मारियुपोल में 3,000 निवासियों सहित 6,000 से अधिक लोगों को शुक्रवार को निकाला गया था। अभिनेता विल स्मिथ ने हॉलीवुड की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस से त्यागपत्र दे दिया है। जैसा कि विदित है, जब ऑस्कर होस्ट ने उनकी पत्नी जेडा पिंकेट स्मिथ की स्थिति के बारे में मजाक किया तो स्मिथ ने दुनिया भर के दर्शकों के सामने रॉक को थप्पड़ मारा। घटना के तुरंत बाद स्मिथ ने अकादमी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। अभिनेता ने अब एक बयान जारी करके व्यवहार को चौंकाने वाला, दर्दनाक और अक्षम्य बताते हुए कहा कि वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शुक्रवार को रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ मुलाकात की। श्री मोदी ने हिंसा को खत्म करने का आह्वान किया है, साथ ही ये भी कहा कि शांति प्रक्रिया में भी किसी तरह के योगदान के लिए भारत तैयार है। भारत ने रूस से रूबल रुपए की अदला बदली के माध्यम से बेहतर क्वालिटी का कच्चा तेल खरीदने का भी संकेत दिया है। इससे पहले रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। उन्होंने यूक्रेन मुद्दे पर भारत की मध्यस्थता के सवाल पर कहा कि भारत एक जिम्मेदार देश है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस भारत को अच्छी गुणवत्ता का कच्चा तेल $35 प्रति बैरल के दाम पर देने पर तैयार है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 74 सेंट और भारत के 56.87 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में, ऑस्ट्रेलिया को 2018 विश्व चैंपियन फ्रांस के साथ विश्व कप में एक कठिन ड्रॉ का सामना करना पड़ेगा। डेनमार्क और टूनिशिया भी ग्रुप डी ड्रॉ में शामिल हैं, लेकिन सोकरूज को पहले संयुक्त अरब अमीरात और पेरू के खिलाफ जून में दो कठिन प्लेऑफ मुकाबले करने होंगे। ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में दुनिया में 42वें स्थान पर है। यदि वो इन दो फाइनल्स में सफलतापूर्वक प्रदर्शन करता है तो नवम्बर में फ्रांस के लिए ऑस्ट्रेलिया पहला प्रतिद्वंदी होगा। टूर्नामेंट 21 नवम्बर से 18 दिसम्बर तक कतर में चलने वाला है। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को पर्थ में बौछारें, तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। मेलबर्न में बौछारें, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री। होबार्ट में देर तक बौछारें, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। कैनबरा में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। सिडनी में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। ब्रिस्बेन में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 18 डिग्री। और डार्विन में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।